संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
बारह भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें बोधि दुर्लभ भावना की बात है। बोधि माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इनकी प्राप्ति इस मनुष्य पर्याय को पाकर के भी अत्यंत दुर्लभ है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब इतनी दुर्लभताओं की बात अपन ने की कि मनुष्य की देह, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, ये चीज़ें उत्तरोत्तर महादुर्लभ हैं, और सबसे ज़्यादा दुर्लभ है आत्मा की साधना। अभी आप कह सकते हैं कि ये जो धर्म के तत्व ज्ञान की बात सुनना, ये दक्षिण भारत वालों के लिए तो बहुत कठिन है कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, और वहाँ जो विद्यार्थी वो यहाँ की भाषा भी नहीं समझते, और यहाँ भर्ती भी हो जाते हैं बेचारे, तो 6-6 महीने तक तो वहाँ की भाषा ही नहीं समझ पाते हैं, है ना? कितना दुर्लभ है उनके लिए आत्मा की बात समझना। लेकिन जयपुर वालों के लिए तो बहुत सरल है ना, क्यों? जयपुर वाले चाहें तो इसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं ना। कौन काय का लाभ? सत्सज्जनों की संगति का, यानी सद्धर्म को सुनने की बात, चर्चा तो यहां रोजाना होती है ना अजित बाबू, तो वो तो सब जने ले सकते हैं कि नहीं। ये 3 लाख लोग जैनी, जो अजैनी है 30 लाख, क्यों? लेकिन जो 3 लाख जैनी हैं, उन्हें ये सुविधा प्राप्त है कि नहीं है, बोलो। लेकिन प्राप्त होने पर भी वे लाभ क्यों नहीं ले रहे, बोलो? क्योंकि नर देह की प्राप्ति हो गई और उत्तम देश भी प्राप्त हो गया, पूर्ण आयु भी प्राप्त हो गई है, क्योंकि जब तक 60-70 वर्ष की उम्र के हमारे सामने आए हो, तो अगले इतने ही थोड़ी है जयपुर में 3 लाख में, क्यों? हजारों लोग हैं ना ऐसे, क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? तो वो इतनी जो स्टेप बातें बताई, इनमें जाकर आप एक एक की जांच करो, तो वो कहीं ना कहीं अटका प्राप्त मिल जाएगा। वो कोई ऐसी आजीविका में फंस गया है, ख्याल में आए ना, जो उसके कुल में, उसके धर्म में वो करने योग्य ही नहीं थी, या वो वासना की मंदता की वजह से सुबह से लेकर शाम तक धंधे ही पानी में लगा रहता है, और उसे आत्मा की बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है। थोड़ी आप कल्पना करके देखो ना कि आज गुरुदेव श्री नहीं है, तो उनकी बात अपन को सुनना कितना मुश्किल हो गया है। और भी हमारे संत हैं, क्यों, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी बात सुनना समझना हमारे लिए कितना कठिन हो गया। कल हम भी नहीं होंगे ना, तो उसके बाद ये तत्व ज्ञान की चर्चा हमारे लिए कितनी असंभव हो जाएगी। तो वो जो हम कहते हैं 3 लाख लोग कहते, भैया तुम तो वहीं रहते हो, तुम तो महाभाग्यशाली हो कि वो जयपुर में रहते हो, तो तुम्हें तो बहुत बढ़िया लाभ मिलता होगा। एक दफे की सही घटना है कि मैं तारंगा में प्रवचन, तीर्थ क्षेत्र में तारंगा गुजरात में, तो वहां प्रवचन कर रहा था मैं, शिक्षक विधान किसी गुजराती भाई ने कराया था, मैं वहां प्रवचन कर रहा था। बसंत भाई दोषी है ना, उनके उनके जो बहनों बहनोई थे, उनने शिक्षक विधान वहां किया था, अब मैं वहां प्रवचन करने के लिए गया था। जयपुर की एक बस गई, वो उधर की थी, त्रिपोलिया के उधर के आसपास की, वहां पर कोई अनाज की मंडी है ना, कहाँ, चांदपोल में कहीं, वहां के व्यापारियों की एक बस थी, और वो यात्रियों की आई, और वो मेरे साथ प्रवचन में बैठ गए, उन्हें बहुत अच्छा प्रवचन लगा। तो उनने उनसे लोगों से पूछा, उन गुजरातियों से, कि ये पंडित कौन से हैं, कहाँ के पंडित हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं। उन्होंने कहा, तुम कहाँ से आए हो? भाई जयपुर की बस आई, हम जयपुर के व्यापारी हैं। ये पंडित भी जयपुर के हैं, तुम इन्हें नहीं जानते क्या? नहीं, हमसे बोला पंडित जी, तुम्हारी जयपुर वालों की बस आई, हम तो नहीं देखा है ना कभी, बोलो। वो जयपुर वालों ने हमें तारंगा में सुना, वो जयपुर में नहीं सुना, जयपुर में रोजाना सुनाते हैं, बोलो क्या करें। ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जो हिंदुस्तानी हैं और जिनने हमें अमेरिका में सुना, हिंदुस्तान में नहीं सुना, जयपुर के और हमारे पड़ोस में बापू नगर के, वो बापू नगर वालों ने बापू नगर में नहीं सुना हमें और अमेरिका में जाकर के सुना, क्योंकि वहां उनके बेटे रहते हैं, उनके बेटे के पास गए थे, वहां हम प्रवचन कर रहे थे मंदिर में, तो बेटा बहू आते थे, साथ में बुढ़ा बुढ़ी भी आ गए उनने हमारा प्रवचन वहां सुन लिया। अजमेर के यहाँ के सब के बता सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं आए, उनने कभी नहीं सुना, लेकिन अमेरिका में उन्होंने सुना। बोलो तो अभी आप समझ लीजिए कि कितना दुर्लभ है। आप लोग दक्षिण भारत के इतनी दूर दूर के, और आपके लिए इतना सुलभ है कि 5 साल तक आपको बहुत चांस मिलते हैं ना सुनने के, और आप टकटकी लगाकर सुनते हैं, और इसी जयपुर में बैठे हुए पड़ोस में रहने वाले हजारों लोग हैं, क्यों? और उन्होंने कभी आकर के नहीं सुना, या तो खुद ही दुर्बुद्धि आ गई तो नहीं सुना, या किसी ने प्रतिज्ञा दिला दी कि कहां इस चक्कर में पड़ते हो, तुम क्यों इस खतरनाक जगह जाते हो, सबसे ज्यादा खतरनाक जगह यही दिखी। क्या गजब हो गया है कि बच्चे सिनेमा में जाते हैं तो किसी को कोई खतरा नहीं लगता है, टीवी पे बैठे रहते हैं तो किसी को कोई खतरा नहीं लगता है, और वितरा विज्ञान पाठशाला में पढ़ने जाएं तो खतरा लगता है, अमिताभ बच्चन का कमर मटकाते हुए नाच देखें तो किसी को खतरा नहीं लगता है, और पंडित हुकुमचंद का भाषण सुनने में खतरा लगता है, क्या है? एक है क्या? तो इसलिए कहते सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिसके भाग्य में नहीं हो तो इतने सुंदर अवसर को भी वो ऐसे ही गमा देता है। तो कहां ना कहां अटका है कि वो दुर्वासना में अटका है, या परिवार की अनुकूलता नहीं है, ख्याल में आए ना, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि का विपर्यास उसके अंदर लगा हुआ है और जरा सी बात में वो अटक जाता है। इसलिए कहते हैं सद्धर्म की जो आराधना है ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ। क्या है? आत्मा की साधना, अपने आत्मा को जानना पहचानना, उसका ध्यान करना, इसका नाम है आत्मा की साधना। एक निरंतर आगे आगे चल करके महादुर्लभ है। एक दफे किसी के भाग्य में उसे आत्मा की साधना की अवसर प्राप्त हो गया तो समझ लेना उस जैसा भाग्यशाली इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। ये तो एक एंगल हुआ। कहां तक की बात हुई? पहली बात हुई थी निगोद से निकलकर मनुष्य गति तक आए हम। अब दूसरी बात हुई कि मनुष्य गति में आ गए लेकिन आत्मा की आराधना नहीं की, ख्याल में आई ना। तो वहां तक की दुर्लभता की बात है कि साहब हम तो बड़े भाग्यवान हैं कि हमें आपकी बात सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। क्यों? हम तो बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन ये कहते हैं भाई साहब कि तुम इतने बड़े भाग्यवान हो और फिर भी आत्मा की साधना नहीं करते हो, इससे बड़ा अभागापन और क्या होगा? सुनो क्या कहा, अभी तो आप हमें बहुत भाग्यवान कह रहे थे, सारे हिंदुस्तान से छठ छठ के 30-35 विद्यार्थी यहां आए विद्यालय में, क्यों? सारे हिंदुस्तान में से छट छट के आए ना। अभी उन्होंने कहते हम तो महाभाग्यवान हैं कि हमने तो इतनी बात सुनी समझी, तो क्या तुम्हारे हाथ आया, सम्मत दर्शन हुआ कि वो तो नहीं हुआ? कि तुम जैसा अभागा कोई हुआ नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे यहां तक आ नहीं पाए इसलिए नहीं हुआ, तुम तो यहां तक आकर के नहीं हुआ, तो क्या समझ लेना आप। के साथ मेरी लाठी निकलने वाली थी, बस एक नंबर मेरा कम रह गया, क्यों? नहीं तो उसमें मेरे ही नंबर आने वाला था करोड़ों रुपए की लाठी में, एक नंबर रह गया। क्या समझा कि तुम इतना भाग्यशाली थे, क्यों? तो तुमने फिर आत्मा की साधना क्यों नहीं की? बस लोग कहते पूज्य गुरुदेव श्री से कहते थे, हमने साहब हम महाभाग्यशाली हैं कि उस काल में पैदा हुए कि जिस काल में आपका जन्म हुआ, और हमको आपको 20-20 वर्ष तक लगातार आपके सत्समागम में रहकर का लाभ मिला, और हमने तो आपका भरपूर लाभ उठाया। क्यों, क्या लाभ उठाया भरपूर? संबंध में ज्ञान चात्र की प्राप्ति हुई, आत्मा की साधना तुमने की कि वो तो नहीं हुई, तो कुछ लाभ नहीं उठाया। समझ रहे हैं ना, तुम भी बहुत मान रहे हो कि हमने बहुत लाभ उठाया है। हे उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, एक कहां तक की बात हुई कि आत्मा का ज्ञान दर्शन और ध्यान माने सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति माने आत्मानुभूति की प्राप्ति, ये महादुर्लभ। कहां से? नर देह से। वैसे तो निगोद से बात करो, निगोद से और रत्नत्रय की दुर्लभ, बोधि माने रत्नत्रय की दुर्लभता तक की बात आई। अभी आगे और बात है कि रत्नत्रय की पूर्णता फिर महादुर्लभ है। क्यों? सम्मा दर्शन हो गया तो अनुवृत्त महादुर्लभ है, अनुवृत्त हो गया तो महावृत्त महादुर्लभ है, महावृत्त दुर्लभ हो गया तो फिर शुद्धोपयोग महादुर्लभ है, फिर श्रेणी का चढ़ना महादुर्लभ है, फिर वीतरागी होना महादुर्लभ है, फिर सर्वज्ञ होना महादुर्लभ है, फिर सिद्ध होना महादुर्लभ है। समझ रहे ना, अब एक लंबी दुर्लभता की एक लाइन और लग रही है। अब वो कौन सी लाइन है अन्ना जी? कि जिसे अभी हमें पार करना है। अभी तो हम इस बिंदु तक नहीं आए हैं, नर देह तक वाले बिंदु तक कोई आ गया। अपन लोगों में से कहां कहां तक आए हैं अजित जी? कोई नरदेह तक आ गया, कोई उत्तम देश तक आया, कोई पूर्ण आयु तक आया, कोई शुभ आजीविका तक आया। ऐसे भी अभागे हैं ना इस देश में कि जिनको ऐसे उत्तम देश में उनका जन्म हुआ। ये इतने भाग्यवान थे फिर भी जाकर अपना प्यारा देश छोड़कर थोड़े से भोग सामग्री के लिए, पैसों के लिए जाके उस मलेच्छ देश में बस गए। क्यों? जहां साग सब्जी खरीदने जाएं तो बगल में मांस की दुकान लगी है, शराब बिक रही है। क्यों? जन्म से तो प्राप्ति हो गई थी। क्यों सोगानी जी, आपके बेटे की समझ लो, ये बहुत लोग यहां बैठे जिनके बेटे वहां चले गए, वे महायोग पुण्य के योग से इस पवित्र देश में पैदा हो गए थे। क्यों? और इसमें जाकर के मनुष्य जन्म पाया लिया था, जैन कुल पा लिया था। क्यों? और आत्मा परमात्मा की तत्व चर्चा सुनने का मौका भी मिल गया था, और महीनों प्रवचन भी सुने थे, और बीच में बस हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भाग गए, बस मिले देश में चले गए। इतनी उपलब्धियां के प्राप्त हो जाने के बाद बस काय से क्यों चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि दुर्वासना की मंदता नहीं थी, बहुत ढेर सारा परिग्रह चाहिए था। आप समझे ना? आप समझ, सोच लो एक एक बात। इतने बढ़िया से बढ़िया अवसर छोड़ करके चले जाते कि नहीं चले जाते? ये हमारे जो विद्यार्थी हैं इनकी बात करता हूं, ये 5 साल पढ़ते हैं, हो जाते हैं, फिर जाकर जैसलमेर के किसी गांव में जाकर के इनकी मास्टरी की नौकरी होने जाती है। न वहां जैन मंदिर, न तत्व की बात सुनने की, न सुनाने वाले, न किसी को सुनाए, न किसी की सुने, वहां जाकर के पढ़ जाते। मैं कहता हूँ क्या जरूरत है वहां जाने की, यहीं रहो ना, सुनो आत्मा परमात्मा की बात। क्यों? कि नहीं नहीं, यह चांस नहीं है तरक्की के, यहां 5-7 हजार मिलेंगे, वहां 10 हजार मिलते हैं। क्यों? अरे जाकर के वहां पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर मरते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जी उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। अब यहां तक, अब यहां आगे सम्मा दर्शन ज्ञान चरित्र हो गया, तब व्रत का होना इतना आसान है? फिर वो कितनी कितनी बाधाएं लोग की दिखाई देती कि नहीं दिखती है कि साहब क्या करें, हम तो मुनि हो जाते लेकिन शास्त्र में लिखा है कि उद्दिष्ट आहार के बिना नहीं ले सकते। अब आजकल तो कोई हमें दिखता ही नहीं कि जो उद्दिष्ट आहार नहीं मुनि महाराज के उद्देश्य से नहीं बनावे और हमको आहार मिल जाए, ऐसा घर ही नहीं रहा इतना पवित्र खाना खाता हो, तो हम कैसे बन पाएंगे? क्यों शास्त्रों में लिखा कि मुनिराज तो वनवासी होते हैं, अब हम तो वन में तो रह ही नहीं सकते हैं। आप समझे ना, तो ये यहां तक आ गए आत्मा की सम्मत दर्शन समझ लिया तो आगे का जो धर्म है उसमें भी कितनी कितनी बाधाएं खड़ी हुई हैं, उन सारी बाधाओं को पार करके। देखो जैसे मैं त्रिंच पर्याय का उदाहरण देता हूं कि महावीर का जीव जो शेर की पर्याय में था और उसने उनका उपदेश सुना, दो मुनिराजों ने उपदेश दिया, तो अब जरा कल्पना करो ये हाँ ये है वो है ना शेर, शेर यहां पर कौन है उधर लास्ट में, उधर पर एक चित्र है, तो उस चित्र में अब देखना कि ये बताया है कि दो मुनिराज एक सिंह को उपदेश दे रहे हैं, बताया कि नहीं बताया। अब मैं पूछता हूं शेर के लिए ये तत्वोपदेश सुनना, सज्जनों की संगति मिलना कितना दुर्लभ काम था, कोई कल्पना कर सकता था कि शेर को जाके कोई उपदेश देगा? ये सोता हुआ सांप और शिकार करता हुआ शेर ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, आप जानते हैं। सोते हुए सांप को जगाया तो समझना तुम्हारी मौत नक्की है, और जब शिकार खा रहा हो शेर उस वक्त उससे कोई ने छेड़खानी करी तो उसे छोड़ेगा नहीं, वो तो वो शिकार को खा रहा था हिरण को, उस मांस पेट में चला गया था, हाथ गीले हो रहे थे खून से रंगे हुए थे, कुछ मांस मुंह में पड़ा था कुछ जमीन पर पड़ा था, और ऐसे अवसर में कोई उन्हें उपदेश देने आएगा बिना निमंत्रण के और आने जाने का किराया भी नहीं देने वाला कोई, क्यों? और ऐसे पात्र उपदेश देता, एक कितना रेयर केस है, कितना बड़ा सौभाग्य है उस शेर का कि उसको उस पर्याय में भी ऐसे सज्जनों की संगति मिल गई और सदुपदेश की प्राप्ति हो गई। अब देखिए, और उसने सम्मत दर्शन की प्राप्ति कर ली, यहां तक शास्त्र में आता कि नहीं आता? अब यहां से मैं जो बात आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इसके बाद भी कोई रास्ता इतना आसान नहीं है कि शेर ने अणुविध धारण कर लिए, अब शेर की पर्याय में अणुविध धारण कर लिए, मांस मदरा का त्याग कर दिया, क्यों अनशन पानी का त्याग कर दिया, अब उसका जिंदा रहना कितना कठिन है कल्पना करो आप, क्योंकि उसकी दांत और आंतें इस शाकाहार घास फूस को पचाने की ताकत नहीं रखते हैं, घास खावें और पचा लेवें, क्योंकि उसके दांत ही चीरने फाड़ने वाले हैं, उसके दांत चबाने वाले नहीं हैं, तो सीधा घास तो खा नहीं जाएगा और आंत भी छोटी सी है उसे पचा नहीं सकती, और हलवा पूड़ी उसे कौन खिलाएगा? क्यों ये मनुष्य गति के जो वृत्ति हैं उनको तो खिलाएंगे बादाम का भी हलवा लोग अठपहरे शुद्ध घी का, उस शेर को कौन खिलाएगा? तो बोलो, सारे जीवन भर भूखा मरने की कीमत पर उसने अणुव्रत लिए, कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? आसान काम है आगे का रास्ता? तुम कह रहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव खराब है, उस शेर के बराबर तो तुम्हारे लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव खराब नहीं है ना, अनछना पानी कैसे छोड़ दिया, अनछना पानी कैसे पिए, कपड़ा कहां से लाए और रखे कहां, और हाथ पैर ऐसे नहीं कि उसे छान ले, फिर लोटा तो है ही नहीं, रस्सी नहीं है कुएं से पानी निकाले कैसे, तो मालूम क्या है ऊपर से झरना गिरता है बहुत ऊंचाई से, तो जो वो पानी गिरता है उस पानी को प्रासक माना जाता है, बस उस पानी को पी ले खत्म, अब वो झरना कहां कहां मिलेगा उसे, कहां कहां उपलब्ध है झरना, हम तो हाथ में बोतल लिए फिरते हैं जहां जाते तो पानी साथ में पानी साथ में पानी साथ में, उस वो कहां पानी साथ में लेके चले, उसे ऐसा कहां जगह मिले कि हर जगह रोजाना प्रासक पानी दिन को मिल जाए समय पर, तो इस कीमत पर उसने अणुविध धारण किए, और हमने 50 शर्तें लगा ली कि पंचम काल में ये नहीं हो सकता इस नहीं हो सकता, तो इस धारी सुविधाएं भी प्राप्त कर ली, ये नहीं हो सकता इसलिए ऐसा कर लिया, ये नहीं हो सकता इसलिए ऐसा कर लिया, ये नहीं हो सकता इसलिए ऐसा कर लिया, तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद फिर अनुवृत्त होना, महावृत्त होना, श्रेणी का मानना, पूर्ण वीतरागी होना, सर्वज्ञ होना, ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ। ऐसा समझ लेना आत्मा की पूर्णता। यहां तक आत्मा की साधना थी और आत्मा की परिपूर्णता भी उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। सोचना, मैंने तो यहीं तक बात समाप्त कर दी है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये पंचम काल तक जीव यहीं तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मेरी हैसियत भी क्या है, ये तो कोई महान संत लिखे इसके आगे की बात। जिस चोटी को अभी अपन ने ही नहीं छुआ है, अपन अब उसकी बात क्या करें, हम तो उसकी भावना ही व्यक्त कर सकते हैं ना। लेकिन ये मनुष्य देह हमने प्राप्त कर ली, नर देह, यहां शुरू हुई बात। तो ये आत्मा की साधना तक, ये पंक्ति को नवोकार मंत्र जैसी बोलने लायक है, दिन में तीन बार। कौन सी? कि नर देह से लेकर आत्मा की साधना तक इतना काम यदि हमने कर लिया तो हम समझ लो इस भव का काम हमारा हो गया। तो कौन कौन सी चीजें लगी ध्यान से कर लो इस बात को एक दफे, जिससे कि हमें मतलब इस मनुष्य भव में हमारा कितना उद्देश्य पूरा हो जाए। कि नर देह तो मिल गई, उत्तम देश तो मिल गया, पूर्ण आयु तो मिल गई, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। अब यहां से हम शुभ आजीविका, आजीविका को तो हम शुभ रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? कि एक जगह हमें सूरदास, तुलसीदास अथवा कोई और श्रृंगार रस की जो कविताएं हैं वो पढ़ाने की नौकरी मिल रही है, और एक जगह हमें समय सार और अध्यात्म की पढ़ाने की नौकरी मिल रही है। लेकिन वो जो श्रृंगार की कविताएं पढ़ाने की नौकरी मिल रही है वहां 25,000 मिलते हैं और यहाँ 20,000 मिलते हैं, बोलो 10,000 मिलते हैं। तो अब तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? मैं आपसे कोई बातें नहीं कह रहा हूं। जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी और इस काम को अपनाया तो मेरे सारे लोग अनुकूल लोगों ने जो मेरे नजदीक थे सख्त विरोध किया कि तुम क्या, मैं क्या बोलू क्या कहा, महान गलती कर रहे हो। ये तो कहें क्या बेवकूफी कर रहे हो, ऐसी तो मैं कह नहीं सकता हूं। क्या गलती कर रहे हो? लोग जिस नौकरी के लिए तरसते हैं, बड़ी मुश्किल से लाते हैं, लाखों रुपए की घूस देके प्राप्त करते हैं, उसे तुम ऐसा छोड़ रहे हो? ऐसा छोड़ रहे हो तुम जो महादुर्लभ है वो, और तुम इसमें फिर आ रहे बनियों की नौकरी में? क्या बात करते हो तुम? मैं क्या छोड़ रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं तुम्हें पता नहीं है? कि क्या, कि मैं शकुंतला की कमर जिंदगी भर नापते नहीं रहना चाहता हूं। यदि मैंने संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया है, यदि मैंने जैन शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, तो मैं उन विद्यार्थियों को शकुंतला की कमर कितनी थी और श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ा पढ़ा कर अपनी सारी जिंदगी नहीं खोना चाहता हूं। तो युद्ध की चर्चाएं करके मैं चाहता हूं कि अमृतचंद्र को पढ़ाऊं, आत्मख्याति को पढ़ाऊं, समय सार को पढ़ाऊं, सारी जिंदगी मेरे इनके अध्ययन अध्यापन में बीते। लिखूं तो इसे, पढ़ूं तो इसे और पढ़ाऊं तो इसे। कि स्थाई नौकरी छोड़ के तुम अस्थाई नौकरी पर जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा, नौकरी स्थाई, नौकरी माने गुलामी, तो अच्छी तरक्की हुई ना कि पक्की गुलामी छोड़ के कच्ची गुलामी में आ रहे। यदि नौकरी गुलामी का नाम है तो, अब वो स्थाई है, लेकिन पहले हम स्थाई हैं। क्यों? कि नौकरी नहीं छूटेगी, लेकिन तुम्हारी देह छूटेगी कि नहीं, ये देह की गारंटी नहीं है, तो गारंटी वाली नौकरी का क्या कहते? कहने का आशा ये है भाई कि हम चुनाव करें। ये शुभ आजीविका ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। क्यों? आप शुभ आजीविका के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करने के लिए कुछ त्यागना भी पड़े तो त्यागना भी पड़ेगा कि नहीं पढ़ने पड़ेगा? अरे नौकरी तो उसकी भी मिल सकती है कि कत्ल खाने में जाएं और कत्ल करने का मशीन चलाए। हम थोड़ी कदम तो बटन दबाते हैं के लिए वो गाय कट जाती है, हम थोड़ी कुछ करते हैं। हम तो उसका अकाउंट लिखते हैं अकेला, हम थोड़ी कुछ करते हैं। वो तो डब्बा बंद तैयार मांस का आता है और हम तो बेच देते हैं, हम थोड़ी कुछ करते हैं। अरे भाई, तू उस महापाप में योगदान कर रहा है, महापाप कर रहा है, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं शुभ आजीव का भी तुम्हें बुद्धि पूर्वक करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब यहां से यहां तक पहुंचने की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, नरदेह से अपनी ड्यूटी शुभ आजीविका से शुरू हो जाती है और आत्म साधना तक पहुंचती है। ये काम हमने अभी यहां कर लिया तो समझ लेना हमने बोधि दुर्लभ भावना की सफलता कर ली। अभी बोधि दुर्लभ भावना का एक बहुत बड़ा पक्ष बाकी है। अभी तक तो बता रहे कि ये बहुत कठिन है, अभी ये बताना बाकी है कि बहुत सरल है। इसकी चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा दिस।